स्वागत है आपका दिन भर में। आज है 27 दिसंबर, दिन मंगलवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में बुलाई विपक्ष की प्रेस वार्ता में शामिल नहीं हुए वामदल और जेडीयू, लेकिन ममता बनर्जी की मौजूदगी से राहुल गांधी को मिली ताकत।
राहुल गांधी अपने आप को एक सक्रिय विपक्षी नेता के रूप में एस्टैब्लिश करने में काफी अग्रसर हैं, और ममता बनर्जी की मौजूदगी और डीएमके का सहयोग, ये आज की जो थी बड़ी हाईलाइट रही।
पार्टी फंड में करोड़ों रुपए जमा कराने पर बीएसपी नेता मायावती ने दी सफाई, कहा उन्हें और उनकी पार्टी को जानबूझकर बदनाम करने की हो रही है कोशिश। और हमारी वर्षांत पेशकश में आज सुनिए हिंदी के सुविख्यात कवि बाबा नागार्जुन पर हमारी खास प्रस्तुति।
अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन खुद पर लगे आरोपों का जवाब नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल सेकुलर समेत करीब आधा दर्जन विपक्षी दलों की बैठक के बाद राहुल ने सवाल किया कि नोटबंदी से जिन लोगों का नुकसान हुआ था उनके लिए प्रधानमंत्री क्या करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नोटबंदी को सबसे बड़ा घोटाला बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 50 दिन का वक्त मांगा था, अब इसमें 3 दिन बाकी हैं। उन्होंने सवाल किया कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे। इस बैठक में वाम दलों और जनता दल यूनाइटेड ने हिस्सा नहीं लिया। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वह ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। रूस के अधिकारियों के मुताबिक रविवार को सीरिया जाते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का एक फ्लाइट रिकॉर्डर मिल गया है। इसे काला सागर से निकालकर मॉस्को ले जाया गया है। रूस के एक प्रवक्ता ने बताया कि ब्लैक बॉक्स संतोषजनक स्थिति में है। इसके जरिए हादसे की वजह की जानकारी की कोशिश की जाएगी। इस हादसे में विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई थी। मारे गए लोगों के शवों की तलाश अभी भी जारी है। तुर्की में तख्तापलट की नाकाम कोशिश के मामले में 29 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ इस्तांबुल में सुनवाई हो रही है। अभियुक्तों पर 1000 से ज़्यादा आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में 40,000 अन्य लोग हिरासत में हैं। अभियुक्तों पर अमेरिका में बसे धार्मिक नेता फतेह उल्लाह गुलेन के संगठन से जुड़े होने का आरोप है। तुर्की प्रशासन उन्हें तख्तापलट की कोशिश का जिम्मेदार बताता है। वो इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। मुकदमे से जुड़े एक वकील ओरहान बेकर ने कहा कि दोषियों को अंजाम तक पहुंचाना अहम होगा। उन्होंने कहा, जो भी लोग तख्ता पलट की कोशिश में शामिल रहे हैं उनकी निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। जो दोषी नहीं हैं उन्हें बरी किया जाना चाहिए। जो दोषी हैं उन्हें कठोर दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ये देश के साथ धोखा है। ये एक वैध सरकार के तख्ता पलट की कोशिश है। ये लोग फतेह उल्लाह गुलेन चरमपंथी संगठन के सदस्य हैं। हम यहाँ तय करेंगे कि इन लोगों की निष्पक्ष सुनवाई हो और उन्हें कठोर दंड मिले। ये थे तुर्की के वकील बेकर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण कोरिया में बस गए उत्तर कोरिया के पूर्व राजदूत टो योंग हो का कहना है कि उन्हें अपने फैसले को लेकर कोई खेद नहीं है। वो लंदन में उत्तर कोरिया के डिप्टी एम्बेसडर थे। यो हो का कहना है कि अब उनके परिवार ने दक्षिण कोरिया को घर बना लिया है। उत्तर कोरिया छोड़ने के बाद पहली बार सार्वजनिक बयान देने वाले योंग हो ने कहा कि उनका आकलन है कि उत्तर कोरिया अगले साल के अंत तक प्रभावी परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। उन्होंने कहा कि खरबों डॉलर के निवेश या फिर दूसरे आकर्षक प्रस्ताव के बाद भी उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन इस महत्वाकांक्षा को नहीं छोड़ेंगे। फिलीपींस में तूफान नीना के गुजरने के बाद यातायात सेवाओं को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ तूफान से बड़े पैमाने पर हुए नुकसान की जानकारी भी मिल रही है। फिलीपींस रेडक्रॉस के प्रमुख रिचर्ड गॉर्डन ने बीबीसी को बताया कि बाटो कस्बे में 10 में से 9 घर ध्वस्त हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अभी 80,000 से ज़्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। चैरिटी प्लान इंटरनेशनल की माई जामोरा ने बताया, फिलहाल मैं मिंडानो में हूँ, ये फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में है। मुझे बिकॉल क्षेत्र में मौजूद सहयोगियों से जानकारी मिल रही है कि क्रिसमस के रोज़ वहाँ हवा की रफ्तार बहुत तेज़ थी। छतों पर लगी लोहे की चादर हवा में उड़ रही थी। उसके अगले दिन पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। अब वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ पीने के पानी की भी कमी है। ये थे माइज जमोरा के शब्द। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में कई विपक्षी दलों ने दिल्ली में आज एक संयुक्त प्रेसवार्ता की, जिसमें केंद्र के नोटबंदी के फैसले को एक बड़ा घोटाला और असंवैधानिक कदम बताया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि नोटबंदी के 50 दिन बाद भी अगर देश में हालात न सुधरे तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एनसीपी और वाम दलों ने इस प्रेसवार्ता में हिस्सा नहीं लिया। सत्ताधारी बीजेपी ने कहा कि विपक्ष की एकता का गुब्बारा फट गया है। दिल्ली से विनीत खरे की रिपोर्ट।
आज नोटबंदी का 47वां दिन है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश को दी गई 50 दिन की डेडलाइन की याद दिलाई और पूछा कि अगले बचे 3 दिनों में वो क्या करेंगे।
नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 30 तारीख को सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा था अगर 30 तारीख को सब कुछ ठीक नहीं होगा तो मैं जवाब दूंगा। 30 तारीख आने वाली है, सिचुएशन वैसी की वैसी है, लोगों को राहत नहीं मिल रही। तो सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन का जो लक्ष्य था वो बिल्कुल फेल हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ एक्शन है, कुछ ही दिन बाद, उनके कहने के कुछ ही दिन बाद आतंकवादी मारे गए, उनके जेब में से 2000 रुपए के नोट निकले। उन्होंने कहा काउंटरफिट पैसे के खिलाफ है। हमने पूछा कितना काउंटरफिट पैसा है, पता लगता है 2 रुपए, 100 रुपए में से 2 पैसे काउंटरफिट। तो प्रधानमंत्री को अब जवाब देना है।
राहुल गांधी ने सहारा डायरी के आधार पर नरेंद्र मोदी पर लग रहे कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की भी मांग की। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि देश में सुपर इमरजेंसी लागू है।
इट इज नॉट इमरजेंसी, इट इज अ सुपर इमरजेंसी इज गोइंग ऑन। आज पुणे में आप देखो 8 लाख जितना भी है वो पावर लूम सब बंद हो गया। चाहे कानपुर हो, चाहे पुणे हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, ट्राइबल लोगों को भी खाना नहीं मिलता। जो सबसे ज्यादा गरीब है उसका पास में भी पैसा नहीं है। ऐसा एक परिस्थिति चलाई है। और अगर हम कहते हैं तो बोलता है कुछ मत बोलो गड़बड़ आ जाएगा, क्या है, सबको डराता है।
विपक्ष के इस हमले के बाद भाजपा नेता और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उल्टे राहुल गांधी से सवाल पूछे।
8 पार्टियों को जुटा चुके हैं, जल्दी ही 8 में 4 बचेंगे और उसके बाद राहुल गांधी को अपना विलाप अकेले करना पड़ेगा। द बबल ऑफ अपोजिशन यूनिटी हैज बर्स्ट।
आज मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं, राहुल गांधी जवाब दे, 2G घोटाले पर क्या कहना है, मनमोहन सिंह ने कोयला घोटाले को क्यों आगे बढ़ाया।
आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मौका था कि सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो और नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार पर दबाव डाले, लेकिन वाम दल, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रहे। वाम दलों के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने कट्टर विरोधी तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं दिखना चाहते थे। उधर जदयू नेताओं के बारे में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के नोटबंदी मामले पर नीतीश कुमार पर किए गए हमले के बाद वो भी ममता बनर्जी के साथ नहीं दिखना चाहते थे। विनीत खरे, BBC दिल्ली।
कांग्रेस के नेतृत्व में हुई विपक्षी दलों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई प्रमुख पार्टियों का शामिल न होना आखिर क्या राजनीतिक संकेत देता है? थोड़ी देर पहले मैंने यही पूछा वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई से।
देखिए, उसकी मुख्य वजह तो कांग्रेस का उसमें एक जो लीडरशिप का रोल है वो है। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और अगर भारत देश के आप मानचित्र में ईस्टर्न कोस्ट की तरफ देखें तो चाहे वो जितने भी राज्य उसमें ज्यादातर पड़ते हैं, अधिकतर वहाँ चाहे वो उड़ीसा हो या तमिलनाडु हो या जो आंध्रा हो, वहाँ कांग्रेस जो एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका में जो तीसरे मोर्चे की पार्टी है उनके साथ होती है। और लेफ्ट पार्टीज का भी जो है कांग्रेस को लेकर के, आर्थिक नीतियों को लेकर काफी मतभेद रहे। इसी तरीके से महाराष्ट्र में जब भाजपा शिवसेना इतनी मजबूत हो गए हैं तो जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है वो अपनी जमीन तलाश रही है, वो कांग्रेस की एक पिछलग्गू नहीं बनना चाहती। तो ये तमाम कारण है कि कांग्रेस का एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते क्षेत्रीय दलों से तालमेल बिठाना मुश्किल होता है।
लेकिन ये तो मुद्दा काफी बड़ा था और यही एक तरह से अवसर था कि केंद्र की जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसके खिलाफ लोग एकजुट हो सकते थे अगर अगले चुनाव की इसको तैयारी का समय भी मान लिया जाए तो।
देखिए, मुझे लगता है कि जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि राहुल गांधी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। और ममता बनर्जी जैसा कदावर नेता, मतलब देखिए वो एक कामयाब राजनेता है क्योंकि वो चुनाव जीती है और भारी मतों से चुनाव जीती है, तो उनकी मौजूदगी ने राहुल को ताकत दी। देखिए, इस समय राहुल गांधी अपने आप को एक सक्रिय विपक्षी नेता के रूप में एस्टैब्लिश करने में काफी अग्रसर है और ममता बनर्जी की मौजूदगी और DMK का सहयोग, ये आज की जो थी बड़ी हाईलाइट रही।
आपको लगता है कि आने वाले समय में किसी कॉमन मिनिमम एजेंडे के तहत राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दल एकजुट हो सकेंगे?
राहुल गांधी के नेतृत्व में क्षेत्रीय दलों का एक साथ आना काफी मुश्किल है, लेकिन एक राहुल को जिसे हम कहते हैं फुटहोल्ड मिला है आज ममता बनर्जी से, उनको एक बड़ा उनकी एक राजनीतिक शक्ति में इजाफा हुआ है। और ये आने वाले समय में देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट क्या होता है, क्या पंजाब में कांग्रेस जीत पाएगी, अगर कांग्रेस जो है अकाली दल और भाजपा का गठबंधन और दूसरी तरफ आपको पराजित करके अपने आप को एस्टेब्लिश करेगी। हारे हुए आदमी को कोई जो है कोई भी नेता जो है वो क्षेत्रीय दल हो या कोई भी राजनीतिक दल हो वो उसको हमेशा कमजोर मानता है और एक तरीके से डिस्कार्ड कर देता है। तो राहुल को जीतना भी होगा और जीतने के लिए पंजाब में और उत्तराखंड में उनके पास एक मौका है, तो ये सब उनके राजनीतिक कौशल पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि मैं विपक्ष की रणनीति के हिसाब से देख रहा हूं कि कांग्रेस की उसकी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये राहुल गांधी के लिए एक बहुत अच्छा मौका है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई। पार्टी फंड में करोड़ों रुपए जमा कराने को लेकर चर्चा में आई बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने आज इस मामले में सफाई दी और कहा कि उन्हें और उनकी पार्टी को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मायावती ने प्रधानमंत्री पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए के दूसरे घटक दल भी अब इस मामले में मायावती को घेरने में जुट गए हैं। एक रिपोर्ट के साथ लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
पार्टी फंड और भाई के बैंक अकाउंट में जमा कराए गए करोड़ों रुपयों का मामला मीडिया में आने के तत्काल बाद बीएसपी नेता मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पैसे उनके कार्यकर्ताओं ने दिए हैं और उन्हें नियम कानून के दायरे में रहकर जमा कराया गया है। उनका कहना था कि ऐसा अन्य दलों ने भी किया है, लेकिन उनकी पार्टी को जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। मायावती ने इन साजिशों में कुछ मीडिया हाउसों के शामिल होने का भी आरोप लगाया।
बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक चलकर अपनी एकत्रित हुई धनराशि को एक रूटीन प्रक्रिया के तहत ही वह हमेशा की तरह ही इसे बैंक में जमा कराया है, जिसे ये लोग बीजेपी के इशारे पर चलकर बीएसपी की छवि को खराब या धूमिल करने के लिए जानबूझकर इसे तोड़ मरोड़ कर काफी गलत तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं।
दिल्ली के करोल बाग में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कल सुबह छापेमारी की थी। ईडी को यहां दो ऐसे बैंक खाते मिले जिनमें करोड़ों रुपए जमा किए गए थे। उनमें एक खाता मायावती के भाई आनंद कुमार के नाम था, जिसमें 1,43,00,000 रुपए मिले, जबकि दूसरा खाता बहुजन समाज पार्टी के नाम पर था और उसमें 104 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और उन्हें दलित होने के नाते फंसाने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव मायावती के आरोपों को हताशा में दिया हुआ बयान बता रहे हैं।
उनका आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है और मनगढ़ंत है। प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है, भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रामाणिकता के साथ और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती है और उनकी परेशानी का कारण ये काले धन पे जो आदरणीय मोदी जी का जो नोटबंदी का निर्णय है, असली परेशानी का कारण बहन मायावती जी का नोटबंदी।
बहरहाल प्रवर्तन निदेशालय ने जिन दो खातों की जांच की है उनमें ये सारी रकम 8 नवंबर यानी नोटबंदी के बाद जमा की गई और ये पैसे टुकड़ों में जमा किए गए। प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी जानकारी आयकर विभाग को दे दी है जो ये जांच करेगा कि इन्हें जमा कराने में नियमों का कितना पालन किया गया। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
और अब हमारी वर्षांत पेशकश। आज की प्रस्तुति हिंदी के मशहूर कवि नागार्जुन पर, जिन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय ग्रामीण जीवन के यथार्थ को जीवंत अभिव्यक्ति दी। साथ ही उन्होंने आज़ादी के बाद के राजनीतिक माहौल पर खुलकर अपनी कलम चलाई। नागार्जुन की दृष्टि लोक जीवन के ऐसे पहलुओं पर गई जिसे अन्य कवि साधारण बात समझकर छोड़ देते थे। दंतुरित मुस्कान, सिंदूर तिलकित भाल और गुलाबी चूड़ियाँ जैसी कविताएँ ऐसी ही काव्य अभिव्यक्तियाँ हैं। नागार्जुन को पत्रहीन नग्नगाश नामक मैथिली रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। बीबीसी संवाददाता जसविंदर सिंह ने नागार्जुन से खास बातचीत की थी। उसी बातचीत पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट सुनिए दिव्या आर्य से।
कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सूई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद।
ये पंक्तियां हैं कवि नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद की। अकाल की विभीषिका इस छोटी सी कविता में जितने जीवंत रूप में सामने आती है, उसे कई पन्नों के गद्य में भी शायद ही समेटा जा सकता है। ऐसा ही था हिंदी और मैथिली के मशहूर कवि नागार्जुन का कविता संसार, जिसमें आजादी के बाद का उत्तर भारतीय जीवन अभिव्यक्ति पाता है। संभवतः 1911 में बिहार के दरभंगा में जन्मे नागार्जुन का असल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उन्होंने मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। बीबीसी संवाददाता जसविंदर सिंह के साथ एक साक्षात्कार में नागार्जुन ने बताया था कि उनकी रचना प्रक्रिया क्या है, यानी ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें कविता लिखने को प्रेरित करती है।
सहज उद्रेक होता है प्राकृतिक भावनाओं के लिए, राजनीतिक व्यंग्य सामाजिक स्थितियों की विषमता से उभरती है। तो ऐसा है कि हम दो स्थितियों में कविता के प्रति झुकते रहे, या तो हम गुस्से में हों, सामाजिक विकृतियों के कारण हमारे मन में बदबदाहट हो, तब हम झुकते हैं तो वो कविता स्पष्ट नजर आती है, या फिर सहज हों हम कि नहीं, प्यार का क्षण हो, प्रकृति का क्षण हो, तो दो स्थितियाँ हैं। तो ये स्थिति होती है, ये इसमें साफ पहचान में आती है।
भारत की आज़ादी के बाद गरीबी और जहालत में जी रही जनता को उम्मीद थी कि देश के नेता उनका दुख दर्द समझेंगे, उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे, उनके जीवन में खुशहाली आएगी। लेकिन बहुसंख्यक जनता ने आज़ादी को लेकर जैसे सपने देखे थे, वो उस रूप में पूरे नहीं हुए। लोगों ने महसूस किया कि सत्ता तो अब अंग्रेजों के हाथों में नहीं, बल्कि अपने लोगों के हाथों में है। लेकिन जीवन की परिस्थितियों में कोई खास तब्दीली नहीं आई। नागार्जुन ने लोगों का ये दर्द आओ रानी हम ढोएंगे पालकी कविता में व्यक्त किया। ये कविता उन्होंने तब लिखी थी जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 1961 में भारत की यात्रा करने वाली थी।
आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, राय हुई है यही जवाहर लाल की, रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, यही हुई है राय जवाहर लाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। यह तो नई नई दिल्ली है, दिल में इसे उतार लो, एक बात कह दूं मलका थोड़ी सी लाज उधार लो, बापू को मत छेड़ो अपने पुरखों से उपहार लो, जय ब्रिटेन की जय हो इस कलिकाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, यही हुई है राय जवाहर लाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की।
देश की राजधानी को नई नई दिल्ली कहने वाले नागार्जुन बताते हैं कि उन्होंने देश के राजनीतिक माहौल पर कटाक्ष करने वाली कविताएं यूं ही नहीं लिखी थी, बल्कि वो कविताएं आम लोगों के जीवन यथार्थ को समझने के कारण ही निकली थी।
राजनीति का आग्रह कोई जानबूझ कर नहीं आया, किसानों मजदूरों के बारे में या नौकरी पेशा जो मध्यम वर्ग है उसके प्रति सहानुभूति को व्यक्त करते हुए, या जहाँ कहीं हम तीखे हो जाते हैं तो उसका मतलब अकारण वो तीखापन वो उड़ते नहीं हम, वो सहज आता है, उसके लिए हमको कोई पछतावा नहीं होता।
आज़ादी के बाद लोगों को उम्मीद थी कि देश में शिक्षा का प्रसार होगा, गांव-गांव के बच्चे अच्छी तालीम पाकर स्वावलंबी हो जाएंगे। लेकिन ग्रामीण शिक्षा की जो दशा नागार्जुन ने देखी उससे उन्हें घोर निराशा हुई और उन्होंने दुखरन मास्टर नाम की कविता लिखी।
घुन खाए शह तीरों पर की बारा खड़ी विधाता बाचे, कटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में पांच तमाचे, दुखरन मास्टर गढ़ते रहते किसी तरह आदम के सांचे।
नागार्जुन का कवि हृदय सिर्फ देश के किसानों मजदूरों की दशा और राजनीतिक माहौल को देखकर ही नहीं जागा, बल्कि उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का भी बेहद काव्यात्मक चित्रण किया। बर्फ पड़ी है, ऋतु संधि, मेघ बजे, फूले कदम्ब उनकी ऐसी ही कविताएं हैं जहां प्रकृति के मनोहारी सौंदर्य को उन्होंने शब्दों में बांध एक नया सौंदर्य दे दिया है। बादल को घिरते देखा है उनकी एक मशहूर कविता है, वो खुद इसके बारे में बताते हैं।
शिमला वाले एरिया में घूम रहे थे, सतलज के किनारे किनारे हम तिब्बत के बॉर्डर तक चले गए, जहाँ देवदार के जंगल हमको मिलते थे, उसका इसमें चित्रण आया हुआ है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा। इस तरह के कई टुकड़े हैं।
हिंदी साहित्य में नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहकर पुकारा जाता है, जिन्होंने कबीर की तरह ही समकालीन अव्यवस्थाओं, विषमताओं, समस्याओं और कुरीतियों पर कविता के माध्यम से हमला किया। नागार्जुन की कविता अपने तरह की अलग कविता थी, जिसे किसी दूसरे बड़े कवि से प्रेरित नहीं कहा जा सकता। वो खुद भी कहते हैं,
यह हमारा संयोग था, शुभ कहना चाहिए, कि हम हिंदी में किसी कवि से हम प्रभावित नहीं हुए। हम शुरू में संस्कृत से हम आए, बाद में हमारे तो अब ये है कि चूँकि हम ये मानते हैं कि एक खेतिहर किसान जो है वो हमारा अच्छा गुरु हो सकता है। कविता खाली निराकार नहीं होती है, कहा नहीं हमने कि भाषा सिर्फ शब्दों का समूह नहीं हुआ करती, भाषा माने वो जीवन।
हालांकि नागार्जुन पर आरोप भी लगे कि वो सत्ता के कथित उत्पीड़क और गरीबों की अवहेलना करने वाले चरित्र के खिलाफ आवाज तो उठाते हैं, लेकिन मौका पड़ने पर शासन से पुरस्कार लेने में परहेज भी नहीं करते। नागार्जुन इमरजेंसी के खिलाफ थे, उन्होंने इंदिरा जी की जमकर निंदा की थी, लेकिन एक बार जब उनके हाथों से उन्होंने पुरस्कार ग्रहण किया तो उनकी आलोचना भी हुई थी। उन पर जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के साथ खड़े होने पर भी उंगली उठाई गई थी।
इंदिरा से सम्मान ग्रहण किया वह एक आंशिक सत्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो हिंदी संस्थान है उसके द्वारा आयोजित था, और वो था कि देश के जो सर्वोच्च राजनीतिक प्रतिनिधि इंदिरा गांधी, उनके हाथों से वो पुरस्कार दिलवाया जाए। महादेवी जी थे, हम भी थे, वो तो राष्ट्र का था, वो एक प्रतीक के रूप में थी, वहाँ से वो पहुँच गई थी, हम भी पहुँचे। इसलिए और ये रही बात जेपी वाले आंदोलन में हमारे शामिल होने की, उसमें ये थी कि हमने ये देखा यह व्यक्ति बावजूद अपने अंतर विरोधों के इस वक्त इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ खड़ा है, तो हम बिल्कुल शामिल। हमने कहा चौराहे पर हम खड़े हुए, चौराहे पर हमने कविताएं सुनाई, इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को उतार दिया, भूल गई बाप को, क्या हुआ आपको। जब मोह भंग हुआ तो हमने अपने को विथड्रॉ कर दिया, क्योंकि मोह भंग तब हुआ जबकि जेल के अंदर हम गए, और उसमें 70% जो है RSS वाले होते थे, 10% समाजवादी होते थे, 5-7% वामपंथी होते थे, CPM पंथी। तो ये परसेंटेज देखा तो हमारा मोह भंग वहाँ हुआ। मैंने कहा ये सारा आंदोलन जो है JP का, ये RSS वाले नौजवानों के कंधे पर चल रहा। तो हमने कहा ये कहाँ कल्याण करेगा, तो इसे हमको वहाँ मोह भंग हुआ जेल में।
इन आलोचनाओं के बावजूद नागार्जुन बेजोड़ जन कवि थे। उन्होंने आए दिन बहार के, शासन की बंदूक, कर दो वमन जैसी तमाम ऐसी कविताएं लिखी जिसने आजाद भारत के यथार्थ की ओर हमारा ध्यान खींचा था। उनकी ऐसी ही एक कविता है, बाकी बच गया अंडा।
पांच पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, पांच पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए चार, चार पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को बाकी रह गए तीन, तीन पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो, अलग हो गया उधर एक, अब बाकी बच गए दो, दो बेटे भारत माता के, छोड़ पुरानी टेक। चिपक गया है एक गद्दी से, बाकी बच गया एक, एक पूत भारत माता का कंधे पर है झंडा। पुलिस पकड़ के जेल ले गई, बाकी बच गया अंडा।
नागार्जुन का मानना था कि सरकार के संरक्षण में रहकर साहित्य की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। वो ऐसे साहित्यकारों के खिलाफ रहे जो सत्ता का संरक्षण पाने के लिए, सत्ता का अनुग्रह पाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, और इसीलिए नागार्जुन सरकारी आयोजनों से भी दूरी रखना चाहते थे।
वाजपेयी का व्यक्तिगत महत्व बढ़ता है उसे, भारतीय कविता का महत्व उसे नहीं बढ़ता। भारतीय कविता का महत्व वहाँ से बढ़ता है जहाँ हम कहते हैं बस्तर के जंगलों में आदिवासी जो है वो जब गाता है, वहाँ चांदनी रात में जो गाता है उसमें हम समझते हैं उसमें काव्य बीज हमको मिलते हैं। यहाँ तो काव्य बीज नहीं मिलेंगे, नहीं, बस्तर के जंगलों में ये आदिवासी क्षेत्र, यहाँ ये मुंडा उरांव, ये रांची में ये संताल लोग हैं, इनके तो उनके बीच में बीच बीच में हमको ये होता है कि हमारे जैसे लोगों को ताजगी हासिल करने के लिए उनके बीच में जाकर रहना चाहिए।
नागार्जुन ने कविताएं ही नहीं लिखी बल्कि बलचन्मा, वरुण के बेटे, रतिनाथ की चाची और बाबा बटेसरनाथ जैसे चर्चित उपन्यास भी लिखे। जन सामान्य के जीवन और उनके सुख दुख के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, संबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ जैसी कविता लिखने वाले नागार्जुन का 5 नवंबर 1998 को निधन हो गया। लेकिन उनका कालजयी साहित्य हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। दिव्या आर्य, BBC, दिल्ली।
इस पेशकश के बारे में लिखिएगा अपनी राय। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं इंदु पांडे। साल 2017 के शुरू होते ही बैडमिंटन जगत के बड़े प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ खेलते दिखेंगे। प्रीमियर बैडमिंटन लीग जो कि 1 जनवरी से शुरू होने वाली है और सबकी नजरें दुनिया के बड़े खिलाड़ियों पर होंगी जो अपने ही देश के प्लेयर्स को चुनौती देने कोर्ट पर उतरेंगे। नए सीजन में कुछ नए मुकाबले भी देखने को मिल सकते हैं। टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों का आयोजन हैदराबाद में होगा जबकि फाइनल दिल्ली में खेला जाएगा। फॉर्मर इंडियन बैडमिंटन प्लेयर दिनेश खन्ना का मानना है,
खिलाड़ियों के लिए काफी मॉनेटरी इंसेंटिव भी इसमें रहता है तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात ये है कि इसमें मेरे ख्याल में 9 ओलंपिक मेडल विनर जो हैं किसी न किसी साल के और सिंगल्स डबल में मिला के वो खेल रहे हैं, 6 अलग अलग जगह पे हो रहा है।
इतना ही नहीं कई खिलाड़ियों पे सबकी नजरें भी बनी रहेंगी जिसमें से एक नाम है भारतीय बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु का। और ओलंपिक सिल्वर जीतने के बाद PV सिंधु काफी बेहतरीन फॉर्म में चल रही हैं। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारतीय क्रिकेट के लिए साल 2016 बहुत ही शानदार रहा। महिला, पुरुष और अंडर 19 तीनों ही टीमों ने इस साल एशिया कप जीतकर एशियाई क्रिकेट जगत में अपना दबदबा कायम किया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें रणजी ट्रॉफी की तो झारखंड रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में झारखंड का मुकाबला तमिलनाडु से होगा। तो ये थी खेल की खबरें। इसी के साथ दीजिए इजाजत इंदु पांडे को, फिर से मिलेंगे।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। कांग्रेस की अगुवाई में करीब आधा दर्जन विपक्षी दलों ने नोटबंदी के मुद्दे पर बैठक की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीखे सवाल पूछे। इस बैठक में वाम दल और जनता दल यूनाइटेड मौजूद नहीं थे। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी एकता पर सवाल उठाया। रूस के अधिकारियों के मुताबिक रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का एक फ्लाइट रिकॉर्डर मिल गया है। तुर्की में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के मामले में 29 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सुनवाई हो रही है। दक्षिण कोरिया में बस गए उत्तर कोरिया के पूर्व राजदूत टो योंग हो का कहना है कि उत्तर कोरिया अगले साल के अंत तक प्रभावी परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। BBC समाचार।
इसी के साथ दिनभर की यह सभा भी यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया तिलक राज भाटिया ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की पल पल बदलती खबरों के लिए देखते रहिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। नमस्कार।